the feeling is here on this. Foreign Minister Jean-Yves Le Drian said Sunday it was urgent to reach an agreement on Brexit trade talks, and he blamed the stalemate on Britain's attitude. The foreign minister told French radio that talks aren't going well and that, quote, with only 2 months left, it's urgent and the countdown has started, end quote. He continued saying the French prefer a deal, but one that includes a broad package, including fisheries issues. The United Kingdom formally left the EU on January 31st, but it remains in a transition phase under which EU rules still apply until December 31st, after which either a new trade regime comes into force or rules set by the World Trade Organization take effect. Meantime, police say they were searching for a man in relation to a two-hour stabbing spree in the city of Birmingham in central England early on Sunday. The incident left one man dead and seven people injured, two of them critically. The knife attacks happened in four locations in the city center, starting from 2330 GMT, police said. They also said that they're treating the stabbings as a linked series. West Midlands police also said there was no suggestion that the attacks were targeted at any section of the community or were gang-related, and that the people targeted seemed to be random. Britain's Foreign Secretary Dominic Raab said he had no information to indicate the incidents were terrorism-related, but that the public should stay very vigilant. An experimental reusable Chinese spacecraft returned to its designated landing site Sunday after 2 days in orbit, China's official Xinhua news agency reported, saying the successful flight marked an important breakthrough in reusable spacecraft research. The Chinese spacecraft was launched into orbit Friday via a rocket that has been used to put crewed and uncrewed Chinese spacecraft into orbit in the past. This is VOA News. Nearly 100 people were arrested by Hong Kong police Sunday as riot officers swooped on democracy protesters opposed to the postponement of local elections. Sunday was meant to be voting day for the city's partially elected legislature, one of the few instances when Hong Kongers get to cast ballots. But the city's pro-Beijing leader Carrie Lam suspended the polls for a year, citing the coronavirus. This angered pro-democracy opposition, who had been hoping to capitalize on seething anti-government sentiment. Hundreds of riot police flooded the district of Kowloon Sunday in a bid to thwart online calls for flash mob protests to mark the suspended vote. Throughout the afternoon, police were heckled by people shouting slogans such as "Give me back my vote" and "Corrupt cops" as officers conducted multiple stop and searches and ordered crowds to disperse. The protest came hours after the police's newly formed National Security Unit arrested Tam Tok Chi, a democracy activist and radio DJ, for uttering seditious words. Tam is the latest in a long line of government critics to find themselves facing prosecution in recent months for their involvement in protests. When they announced the arrest on Sunday morning, police did not explain what Tam may have said that was considered seditious. Belarusian protesters on Sunday prepared a new mass demonstration against strongman Alexander Lukashenko, who has refused to quit after a disputed re-election, and he has also turned to Russia for help. Unprecedented protests broke out in the ex-Soviet country after Lukashenko, who has ruled the ex-Soviet state for 26 years, claimed re-election with 80% of the vote on August 9th. Opposition rival Svetlana Tikhanovskaya said she has won the vote, but Lukashenko's security forces have detained thousands of protesters, many of whom accuse police of beatings and torture. Several people have died in the crackdown, but Belarusians have been demonstrating across the city for nearly a month, with more than 100,000 people flooding the streets of the capital Minsk for three straight weekends. Tikhanovskaya, a 37-year-old political novice, urged supporters to turn up for Sunday's march. She contested the election after her blogger husband was jailed and barred from running along with several other prominent Lukashenko critics. She then left Belarus under pressure from authorities and took shelter in EU member state Lithuania. Russia has said it will respond to any Western attempts to sway the situation, and President Vladimir Putin has raised the possibility of sending military support. For more on these and other stories, please visit our website at voanews.com. Via remote, I'm Laurel Bowman, VOA News.
لسنرز وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں سادیہ زبران جھا. آپ نے ہمارا گزشتہ شو جس طرح سراہا مجھے بہت اچھا لگا, اور ہماری فیمیل لسنرز نے بیوٹی ٹپس کے سیگمنٹ کو بہت پسند کیا اور کہا کہ دیر آئے درست آئے. ارے بھائی اگر اتنا ہی پسند تھا تو پہلے کہہ دیتی, ہم پہلے ہی شامل کر لیتے. اور آج کے پروگرام میں جو مہمان ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ ہیں گلوکار اریب اظہر. تو آئیے سب سے پہلے ان کا ایک گیت سنتے ہیں اور پھر ان سے بات چیت کریں گے.
مڈ مارچ کو میں کراچی سے واپس اسلام آباد شفٹ ہوا. پچھلے 2 سالوں سے میں کراچی میں تھا. وہاں پہ ایک بڑا زبردست ادارہ ہے جس کا نام ہے T2F the second floor. تو وہ ایک کلچرل اسپیس ہے, کلچرل کیفے ہے, آرٹ گیلری ہے, چھوٹا سا پرفارمنس وینیو ہے جو کہ ایک سبین محمود ایک دوست ہوتی تھیں انہوں نے شروع کیا تھا کراچی میں, اور یہ ان کا ادارہ ہے. تو وہ پچھلے 2 سال سے میں اس کو چلا رہا تھا, اور وہ ایک بڑا زبردست تجربہ تھا کیونکہ میں بلا پڑا تو کراچی میں, لیکن پھر میں اپنے 17 سال کی عمر سے کراچی میں کبھی دوبارہ رہا نہیں. تو مجھے یہ موقع ملا کہ T2F کے تھرو میں بالکل صحیح کراچی کی جڑوں میں دوبارہ گھسوں, اور وہاں کی ایک کلچرل زندگی جو ہے اس میں حصہ لوں. تو وہ بڑا اچھا تجربہ تھا, لیکن میں نے بس وہاں سے استعفیٰ دے دیا تھا, اور اتفاقاً کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ مجھے کچھ وقت ملے اپنے میوزک کا بھی, اور میری والدہ اور بہن بھی اسلام آباد میں ہوتی ہیں, ان کو کراچی شفٹ کرنے سے تھوڑا سا میں جھجک رہا تھا, اور پھر مجھے لگ رہا تھا کہ T2F کے ساتھ مجھے وقت نہیں مل رہا کہ میں اپنے پروجیکٹس کو آگے بڑھاؤں, وہ ایک وینیو کو چلانے میں ہی میرا سارا وقت لگ رہا تھا. تو میں بس یہ جیسے ہی میں واپس شفٹ ہوا اس کے 3 دن بعد یہ کرونا لاک ڈاؤن شروع ہو گیا, تو بڑا اچھا ہو گیا کہ یہ اس وقت پہ میں اپنے والدہ اور بہن کے ساتھ اسلام آباد میں ہوں. اور یہ کہ یہ وقت تو ظاہر ہے کہ اتنے سارے لوگوں کے لیے اتنی مشکلیں آئی ہوئی ہیں, لوگوں کے پاس کام کاج نہیں ہے, اور بہت مشکل ایک وقت ہے پوری دنیا کے لیے. لیکن مجھے کہنے میں عجیب لگتا ہے, لیکن مجھے تو اس وقت کا بڑا ایک عجیب سا ایک لطف آیا ہے, مجھے مزہ آیا ہے کہ اس وقت نے ہم سب کو موقع دیا ہے کہ ہم ذرا थोड़ा सा जरा जिंदगी का जो एक जिंदगी की जो एक दौड़ है, जो एक रैट रेस है, उससे थोड़ा सा हम हट के जरा अपनी जिंदगी का जायजा लें, तो मुझे तो ये पीरियड बड़ा अच्छा लगा है।
कराची से वापस आने के बाद आपने कोई म्यूजिक वीडियो या कोई ऐसा सोलो सॉन्ग किया है?
जब से वापस आया हूँ, एक तो ये कि देखें, म्यूजिक इंडस्ट्री तो पूरी दुनिया में जो है, म्यूजिक इंडस्ट्री कोरोना के जमाने में रुक गई है, तो सारे लाइव कॉन्सर्ट्स, फेस्टिवल सब बंद हो गए। मेरा प्रोग्राम था कि मैं वापस इस्लामाबाद आते ही अप्रैल में मैं अपना अगला फेस्टिवल करूंगा, तो इस्लामाबाद में एक फेस्टिवल होता है म्यूजिक मेला, वो मैंने और दोस्त ने शुरू किया था 2014 में, फिर मैंने वो 3 साल किया, फिर उसके बाद मैंने एक और फेस्टिवल प्लेटफॉर्म शुरू किया आर्ट लंगर के नाम से। तो मेरा तो प्रोग्राम था कि हम आर्ट लंगर का अगला फेस्टिवल अप्रैल में करेंगे इस साल, और इस साल उसकी एक थीम होनी थी एनवायरनमेंट के ऊपर, तो हम उस फेस्टिवल का नाम रख रहे थे माँ धरती फेस्टिवल, और
सही
मैंने आर्टिस्ट को भी लाइनअप करना शुरू कर दिया था, वो PNCA का वेन्यू भी बुक कर दिया था, स्पॉन्सर से भी कुछ लॉक हो गए थे, कुछ से बातचीत चल रही थी, तो फिर ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो म्यूजिक इंडस्ट्री तो बिल्कुल ठप हो गई जैसे ही ये लॉकडाउन शुरू हुआ, लेकिन ये कि मुझे कुछ मौका मिला कि मैं कुछ अपने पुराने कॉम्पोजिशंस जो कि मेरे फंसे हुए थे, उनको मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, उनको मैंने कंप्लीट किया। कुछ मैंने लाइव कॉन्सर्ट्स किए जूम के जरिए, कुछ फंड रेजिंग कॉन्सर्ट्स थे, कुछ इंटरनेशनल फेस्टिवल्स थे जहां पे मैं अपने यहाँ पे जूम के थ्रू कुछ मैंने रिकॉर्डिंग्स भेजी, कुछ लाइव भी बजाया, और एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट करने का मौका मिला। एक यूके बेस्ड बैंड है जिसका नाम है द सूथसेयर्स, तो उनके साथ मिलके हमने दो कोलैबोरेटिव गाने बनाए जो कि वहां पे फिर नॉटिंगम आर्ट्स मेला में वहां पे फीचर हुए। तो इस तरह के म्यूजिक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स चलते रहे, उसके साथ साथ मैं कुछ थोड़ा सा वीडियो प्रोडक्शंस की तरफ भी मैंने ध्यान दिया, वो चीजें जो मैं बड़े अरसे से करना चाह रहा था लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था, तो इस वक्त मैंने अब वो सारी चीजें अब मैं निकाल रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। एक ऑनलाइन वेब सीरीज हमने एक स्टार्ट की जो कि एक इंटरव्यू बेस्ड सीरीज है जिसका नाम है मकाम लाइफ आफ्टर कोरोना। तो हर 2 हफ्ते बाद हम अपने आर्ट लंगर के फेसबुक पेज से ही हम उसको फीचर करते हैं, और उसमें हम मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट से इंटरव्यू करते हैं, मुख्तलिफ एक्सपर्ट से, और हम मुख्तलिफ माशरे के पहलुओं पे गुफ्तगू करते हैं। तो हमने एक एपिसोड गुड गवर्नेंस पे किया, एक एपिसोड इकोनॉमी पे किया, एक एपिसोड एजुकेशन पे किया, एनवायरमेंट पे किया, डिजाइन एंड आर्किटेक्चर पे किया।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज facebook.com/voaurdu पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं।
मेरे देश में है इम्कान बहुत, आस उम्मीद अरमान बहुत, सहरा में एक बूंद गिरे, चश्मा पत्थर से फूटे, सख्त सीत में धूप खिले, दरिया में कोई लहर उठे, मेरे देश के बासी यार बहुत, वारफ्ता दे प्यार बहुत, शगुफ्ता लहजों में बेसाख्ता उल्फत की, सदरंग बातें करते हैं कानों में रस भरते हैं, मेरे देश में है इम्कान बहुत, आस उम्मीद अरमान बहुत, सलसल करते हैं, मेहनत से गुरेज नहीं पर मौके कम कम मिलते हैं, जेब में चाहे कुछ ना हो दिल को शादा रखते हैं, मेरे देश में है अरमान बहुत।
کراچی ایک بہت مختلف شہر ہے، اسلام آباد ایک بہت مختلف شہر ہے، تو آپ کو دونوں شہر میں رہنے کا موقع ملا ہے، تو کیا چیز دونوں شہروں کی آپ کو سب سے اچھی لگی ہے؟
یہ بڑا آپ نے موضوع سوال پوچھا ہے. کراچی ایک واقعی ایک ایسا ایک وائبرنٹ شہر ہے پاکستان کا، جو کہ حقیقی معنوں میں اگر ایک کوئی واقعی پاکستانی شہر ہے تو وہ کراچی ہے، کیونکہ کراچی میں آپ کو ہر کوئی ملتا ہے. ایک تو یہ کہ بلوچ، سندھی، پنجابی، پٹھان، اردو سپیکنگ، ہزارہ والے، شیعہ سنی، کرسچن، بوری کمیونٹی سے، آغا خانی، بنگالی، ہر کوئی آپ کو ایک ہی شہر میں بسا ہوا ملتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے وہ صاحب سب دیکھ چکے ہیں، وہ تو وہاں پہ وہ ایک طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ لوگ تھوڑے سے زیادہ ایزی گوئنگ ہوتے ہیں. دوسری طرف یہ کہ کراچی شہر ایسا ہے کہ میرا خیال میں شاید دنیا میں آپ کو اس سے ایک زیادہ کنجیسٹڈ اور پولیوٹڈ شہر مشکل سے ملے گا، اور وہاں پہ کوئی رہنے کی کنڈیشنز جو ہیں وہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے. تو یہ کہ میں واپس، جس طرح میں نے کہا کہ میں مارچ میں شفٹ ہوا اسلام آباد، تو میں کراچی کو، تو کراچی کے لوگوں کو میں بہت مس کرتا ہوں. لیکن جب سے یہ بارشیں شروع ہوئیں اور کراچی میں سیلاب آیا، تو میں تو ایمان سے میں نے کہا کہ شکر ہے کہ میں نے صحیح ٹائم پہ میں آ گیا اور میں نے اپنی والدہ اور بہن کو اس مصیبت سے نہیں گزارا. تو یہ اگر ہم ان دونوں شہروں کو کسی طریقے سے کمبائن کر لیں کہ اسلام آباد کی آب و ہوا، پہاڑ، پانی، سکون، تھوڑی سی ایک آرگنائزڈ زندگی، انفراسٹرکچر، اور کراچی کے لوگ.
قریب کچھ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے ہمارے سننے والوں کو، کیسے شروع کیا؟
تو شروع تو مجھے پھر کہنا پڑے گا کہ میرا خیال میں کہ میں بہت خوش قسمت اس طریقے سے رہا ہوں کہ مجھے خاندان کی طرف سے ہی بہت زیادہ ایکسپوجر ملا آرٹس اور کلچر میں اور میوزک میں بھی، کیونکہ میرے والد جو تھے اسلام اظہر، وہ پی ٹی وی کے بانی ان کو کہا جاتا ہے، تو ان کو پروجیکٹ ملا تھا کہ وہ پی ٹی وی کا پائلٹ اسٹیشن شروع کریں پاکستان میں، اور پھر پہلا ٹی وی اسٹیشن، اور وہ پھر پی ٹی وی کے پہلے پروفیشنل ایم ڈی رہے. تو مطلب جو پاکستان میں ٹی وی، مطلب جو بنیادیں ڈالنے والے تھے، اس ٹیم کو ابا ہیڈ کیا کرتے تھے. تو جب میں پیدا ہوا سن 72 میں راولپنڈی میں، اس وقت ابا پی ٹی وی کے ایم ڈی تھے. تو اس زمانے میں ہمارے گھر میں بہت زیادہ میوزیشنز، آرٹسٹس، پروڈیوسرز، فلم میکرز کا آنا جانا لگا رہتا تھا. اور میری سب سے پرانی یادوں میں ہے کہ میں سامنے بیٹھ کے سن رہا ہوں طفیل نیازی صاحب کو، یا ریشما جی کو، اور شوکت علی کو. اور پھر گھر پہ ایک بہت کمال کا میوزک کلیکشن بھی ہوتا تھا میرے والدین کے پاس. ریکارڈ پلیئر تھا ایک پرانا، اور ریکارڈز تھے ہمارے کلاسیکل میوزک کے اور ہمارے فوک میوزک کے، اور پھر یورپین کلاسیکل میوزک اور جیز میوزک کے. تو وہ میوزک میں پھر بچپن سے سنتا بھی رہا، اور سامنے بیٹھ کے ان سارے ہمارے جو لیجنڈز ہیں ان کو سننے کا موقع بھی ملا. تو یہ کہ بچپن سے ہی مجھے باقی چیزوں سے زیادہ، پتہ نہیں کیوں، میوزک سے شوق لگ گیا.
شام محمد کر جاندی نے
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
तो अरिब, आपने बकायदा म्यूजिक की तरबियत हासिल की है या बस शौक या फनकारी है?
मैंने बहुत अरसे बाद जाके बाकायदा सीखा, और वो भी बहुत थोड़ा सा। ज्यादातर मैंने बेकायदा सीखा, यानी कि उस्तादों के साथ उठना बैठना तो मेरा बचपन से ही था, और उठने बैठने में ही मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा मैं सीखता होता था। और फिर कराची में हमारी जो स्कूल की क्वायर टीचर होती थी, एक पारसी खातून मिसेस लोबो, वो भी बहुत कमाल की टीचर थी। उन्होंने इतनी ज़बरदस्त म्यूज़िक थियरी हमें पढ़ाई। और उसके बाद फिर हम कराची में शिफ्ट हो गए थे जब ज़िया का दौर था। मुझे अब्बा को टीवी से निकाल दिया था, हम सब फिर कराची शिफ्ट हो गए। और कराची में अब्बा ने और जो सानिया सईद जो हैं, जो हमारी एक्ट्रेस बड़ी कमाल की, उनके वालिद साहब ने मंसूर सईद, तो अब्बा ने और मंसूर सईद ने मिलकर एक थिएटर ग्रुप बनाया था कराची में, जिसका नाम था दस्तक। तो उसमें सानिया और मैं बड़े पले हुए इकट्ठे, और जितने भी बच्चों के रोल थे वो हमें मिला करते थे।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर facebook.com/voaurdu पर बराह रास्त देख सकते हैं।
कि आप जब फारिग होते हैं तो किस किस्म का म्यूजिक सुनना उस वक्त पसंद करते हैं? आपके मूड पे डिपेंड करता है या कोई फेवरेट आपका है म्यूजिक?
बिल्कुल मूड पे डिपेंड करता है। कभी मैं कुछ हमारे कुछ फोक म्यूजिक मुझे हमेशा, मेरा ख्याल में कि मुझे सबसे ज्यादा जो दिल को छूती है, दिल को लगती हैं चीजें, हालांकि मैं बहुत ज्यादा जदीद म्यूजिक सुनता हूं, और चंद साल पहले से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक भी सुनना शुरू किया, हालांकि पहले मैं उसको म्यूजिक नहीं माना करता था, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा जो मेरे दिल को छूता है वो है फोक म्यूजिक, और दुनिया भर का फोक म्यूजिक, हमारा फोक म्यूजिक तो है ही जिनके मैंने नाम लिए। इसके अलावा मुझे बंगाली फोक म्यूजिक, जो उनके बाउल म्यूजिशियंस हैं, वो भी हमारे सूफी म्यूजिशियन से बहुत मिलते जुलते हैं, वो बंगाली बाउल म्यूजिक मैं बड़ा सुनता हूँ, राजस्थानी म्यूजिक मैं सुनता हूँ, फिर कभी कोई पर्शियन म्यूजिक, ईरानी म्यूजिक, टर्किश म्यूजिक, फिर क्योंकि मैं यूरोप में रहा तो मुझे वहां का बालकान का म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। मैं कई साल आयरिश फोक म्यूजिक बजाता रहा, क्रोएशिया में हमारा एक बैंड हुआ करता था शैमरॉक रोवर्स, जिसका मैं सिंगर था तो मुझे आयरिश गाने बहुत आते हैं, तो मुझे आयरलैंड का फोक म्यूजिक बड़ा पसंद है, मुझे ब्लूज बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे अफ्रीकन फोक म्यूजिक से मुझे इश्क है, तो मूड पे डिपेंड करता है जी।
अखियां का जल काले बादल भवां से अग लगावांगी और बिसात नहीं कुछ मेरी और बिसात नहीं कुछ मेरी जो बंधड़ी गुंडावांगी तूने काम करके नी मैं सोना समंदर दिल दे अंदर सत समंदर सत समंदर दिल दे अंदर दिल से लहर उठावांगी बिजली होके चमक डरावा बिजली होके चमक डरावा बादल गिर गिर जावा मन करके नी मैं सोना यार मनावांगी इश्क अंगीठी हर मल तारे इश्क अंगीठी हर मल तारे जगन जलावांगी ना मैं ब्याही ना मैं कवारी ना मैं ब्याही ना मैं कवारी बेटा गोद खिड़ावांगी तूने काम करके नी मैं सोना यार मनावांगी ना पटरी बहके लामा कादी पटरी बहके भुल्ला नाद बजावांगी तूने काम करके नी मैं रुठड़ा यार मनावांगी मैं सोना यार मनावांगी मैं
अच्छा तो अरे आप पाकिस्तान में इस वक्त जो म्यूजिक इंडस्ट्री का मुस्तकबिल क्या देखते हैं किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं
देखें जी पाकिस्तान में जिस तरह मैंने जिक्र किया कि टैलेंट तो हमारे पास बेहद है हमारे यहाँ कोई ज्यादा साजगार माहौल नहीं रहा म्यूजिक के लिए पिछले काफी दहाइयों में क्योंकि उस तरीके से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता उस तरीके से आपको मीडिया पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे प्रमोशन नहीं मिलती देखें एक जमाने में जब रेडियो पाकिस्तान में सारे हमारे फोक म्यूजिक म्यूजिशियंस आया करते थे उनका म्यूजिक सुना जाता था कव्वाल कव्वालों का सब म्यूजिक सुना जाता था फिर जब पीटीवी शुरू हुआ तो वो सारे टीवी में उनकी हमने चेहरे भी देखने शुरू किए उसके बाद फिर 80s के दौर में जो है वो सिवाय कव्वाली के बाकी सारा म्यूजिक जो है वो तकरीबन जो है मीडिया पे रोक दिया गया और उसके बाद फिर जब मुशर्रफ के दौर में जब ये मुख्तलिफ चैनल्स खुले और फिर बेनजीर और नवाज शरीफ की हुकूमतों के दौरान शुरू में तो शुरू में बहुत सारे नए म्यूजिक चैनल्स आए जिसमें इंडस म्यूजिक था जिसमें आग टीवी था एआरवाई म्यूजिक था प्ले टीवी था और उनसे काफी फायदा हुआ म्यूजिशंस को हालांकि वो एक सिर्फ जो शहरी म्यूजिशंस थे और जो जरा ज्यादा पॉप म्यूजिशंस थे उनका ज्यादा फायदा था फोक म्यूजिशियंस को फिर भी वो एक्सपोजर नहीं मिलता था लेकिन फिर भी कम से कम चैनल्स थे अब तो देखें जी पाकिस्तान में एक भी म्यूजिक चैनल फिलहाल नहीं है अभी कुछ दोस्त कोशिश में हैं कि वो एक चैनल शुरू करें और इंशाल्लाह वो चल पड़ेगा लेकिन अभी तक जो है अब सोशल मीडिया हमारे पास रह गया है कि हम अपना म्यूजिक ऑडियंसिस के साथ शेयर करें या सोशल मीडिया या रेडियो और सोशल मीडिया और रेडियो से पैसे निकालना बहुत मुश्किल काम होता है तो जाहिर है जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन है यानी कि जिन्होंने बाकी सारे काम काज छोड़ के जो प्रोफेशनली म्यूजिक ही करना चाहते हैं उनको कोई उनके सामने कोई फाइनेंशियल फॉर्मूला तो होना चाहिए कि वो अपनी रोजी रोटी पूरी कर सकें तो वो बनाने वो निजाम बनाने में हम सब लगे हुए हैं अभी हमने हाल में ही एक म्यूजिशियंस यूनियन एसोसिएशन रजिस्टर की है जो कि अभी अभी रजिस्टर हुई है जिसका नाम है United Musicians Association of Pakistan, UMAP. तो इसमें सारे हमारे जो मेन स्ट्रीम म्यूजिशियंस हैं वो सब जुड़े हुए हैं, और अभी हमारी कोशिश है कि हम सारे अपने रीजनल और फोक और क्लासिकल म्यूजिशियंस को भी जोड़ें, और इसका अभी हमने पहला बोर्ड बनाया है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। अभी तक हमारी सिर्फ ये कोशिश है कि हम सिर्फ वो म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए स्ट्रक्चर्स को खड़ा करें, यानी कि रॉयल्टी कलेक्ट करने के लिए इदारे खड़ा करें, वो कानून साजी लाएं जिससे म्यूजिक जो है प्रमोट हो सके। सबसे इसमें अहम बात जो है मैं समझता हूँ वो ये है कि हमें अपने आर्ट्स कल्चर और म्यूजिक को अपनी करिकुलम में, अपने एजुकेशन में शामिल करना है। जब तक हम वो नहीं करेंगे तो हम सही मानों में वो तरबियत नहीं दे सकते। देखें, कल्चर और तहजीब जो होती है वो सिर्फ उतनी ही आगे जाती है जितना हम उसको ले जाते हैं, वो खुद ब खुद आगे नहीं बढ़ती। और आजकल के दौर में तो आप अच्छे से अच्छे स्कूल में चले जाएं, आपको अलामा इकबाल का पता चल जाएगा, आपको विलियम शेक्सपियर का पता चलेगा, लेकिन आपको पठाने खान का नहीं पता चलेगा, आपको भुल्ले शाह का नहीं पता चलेगा, आपको ख्वाजा गुलाम फरीद का या शाह लतीफ का या रहमान बाबा का नहीं पता चलेगा, आपको मोहम्मद जुम्मन या लन फकीर का नहीं पता चलेगा। तो इन चीजों को जब तक हम सिखाएंगे नहीं तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर ये हमारी तहजीब जो है ये आगे बढ़ सकेगी। तो अभी हम एक ऐसे दौर में हैं जिसमें मैं समझता हूं कि कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे हम लोग इस अमल में जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह जो है चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन इसमें जरूरी यह है कि जिस तरह मैंने कहा कि हमारे मेन स्ट्रीम और हमारे एजुकेशनल सिस्टम में म्यूजिक को शामिल किया जाए। अभी तक यह है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी हुई है, उसको या तो अलग होना चाहिए या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पे अभी काम होना बाकी है, लेकिन इंशाल्लाह हो रहा है।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर facebook.com/voaurdu पर बराह रास्त देख सकते हैं।
ऐ हुस्न हकीकी नूर अजल तन वाजिब ते इमकान कहूं तनु खालिक जात कदीम कहूं तनु हादिस खल्क जहान कहूं तनु मुतलक महज वजूद कहूं तनु अलमिया आयान कहूं अरवा नफूस अकूल कहूं अशबा तनु अर्ज से बदते शान कहूं अनवा कहूं औजा कहूं अदवार कहूं औजान कहूं तनु अर्श कहूं अफलाक कहूं तनु नाज नईम जनान कहूं तनु तत्त जमात नबात कहूं हैवान कहूं इंसान कहूं तनु मस्जिद मंदर तनु शाहिद मलक हिजाज कहूं तनु बाएं
अरे मैं ये देख रही हूँ कि आप सिंगिंग के साथ साथ जो है वो सोशल इश्यूज पे बहुत गहरी नजर भी रखते हैं और सोचते भी हैं और काम भी कर रहे हैं और साथ साथ ये एक्टिविज्म जो है ना वो जारी है आपका सिंगिंग के साथ साथ, राइट?
जी बिल्कुल ऐसा है, ये शायद मेरी तरबियत इस तरह हुई है और कुछ मेरी क्योंकि जिंदगी ने मुझे मौका दिया कि मैं जरा दुनिया को भी देखूं, मैं मुख्तलिफ कल्चर्स से भी को भी अब्सॉर्ब करूं, जज्ब करूं। तो मतलब मैं जब क्रोएशिया में रहा तो मैं क्रोएशियन बोलता हूँ, मैं क्रोएशिया के, आजकल जब मैं जाता हूँ उधर तो जो आजकल की नई जनरेशन हैं उनको उनको मैं उनके पुराने गाने सुनाता हूँ कि भाई आपको पता नहीं कि आपके क्या क्या खजाने हैं। तो यह कि मुझे जिंदगी ने ऐसा मौका दिया कि मैं मुख्तलिफ कल्चर्स को अब्सॉर्ब कर सकूं और पाकिस्तान में मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी पोजिशन में हूं कि उन चीजों को जोड़ा जा सके। तो ये मैं समझता हूँ कि एक तरीके से मेरा काम भी बनता है, मेरा फर्ज भी बनता है कि उन चीजों को जोड़ूं। तो इसलिए हाँ, मेरा साथ साथ म्यूजिक के म्यूजिक प्रमोशन, कल्चर प्रमोशन, एक्टिविज्म जिसको आप सही कह रही हैं, उससे बिल्कुल एक गहरा ताल्लुक है। क्योंकि मैंने देखा कि अब अगर एज अ म्यूजिशियन मैं पाकिस्तान में मजीद तरक्की करना चाहूँ तो या तो मेरे लिए बॉलीवुड का रास्ता रह जाता है जो कि आजकल तो जाहिर है बंद हुआ हुआ है, लेकिन या फिर ये हो कि मैं फिर कोई यूरोप अमेरिका की तरफ रुख करूं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर आप तरक्की करना चाहते हैं एज अ म्यूजिशियन तो हमें पहले वो एक म्यूजिक इंडस्ट्री को खड़ा करना है, उनके वो स्ट्रक्चर्स कायम करने हैं। तो इसलिए बहुत सारे मेरे म्यूजिशियन दोस्त भी जो हैं, हमारा दिल तो करता है कि हम सिर्फ म्यूजिक करें लेकिन फिर ये कि हमारी ये भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चीजों को भी आगे धकेलें।
सखी सरदार कलंदर नहीं मिटते दुख के साए मेरा पल पल मन घबराए, नहीं मिटते दुख के साए मेरा पल पल मन घबराए, हल कर दे मुश्किल मेरी तूने सारे रोग मिटाए, हल कर दे मुश्किल मेरी।
ने सारे रोग मिटाए। सहारा है मेरा नाम कलंदर, सहारा है मेरा नाम कलंदर, कलुए सहारे है शामे कलंदर, कलुए सहारे है शामे कलंदर। उठो रिंदो, उठो रिंदो, पियो जामे कलंदर, कलुए सहारे है शामे कलंदर, कलुए सहारे है शामे कलंदर। कलंदर झूलला, कलंदर सोनला, कलंदर जीवला, कलंदर सोनला। पीऊं मैं और झूमे सारे, सितारे इस दर पे झूमे नाचे सारी रात ये चांद सितारे। सितारों का, सितारों का है घर शामे कलंदर, तलुए सहर है शामे कलंदर, तलुए सहर है शामे कलंदर। उठो रिंदो, उठो कलुए सहर है शामे कलंदर, कलुए सहर है शामे कलंदर, कलंदर झूलला, कलंदर सोनला, कलंदर जीवला, कलंदर सोनला। अल्लाह की हस्ती में है शाहबाज की मस्ती शामिल, अल्लाह की हस्ती में है शाहबाज की मस्ती शामिल। जो हर पल बोले लाल लाल है पीर खुशी का कामिल, जो हर पल बोले लाल लाल है पीर खुशी का कामिल। कहीं आका, कहीं आका, कहीं मौला, कहीं है राम कलंदर, कलुए सहर है शामे कलंदर, कलुए सहर है शामे कलंदर। सुने सबकी सदा नामे कलंदर, सुने सबकी सदा नामे कलंदर, कलुए सहर है शामे कलंदर, कलुए सहर है शामे कलंदर। उठो रिंदो, उठो रिंदो, पियो जामे कलंदर, कलुए सहर है शामे कलंदर, कलुए सहर है शामे कलंदर, कलंदर झूलला, कलंदर सोनला, कलंदर जीवला, कलंदर सोनला, कलंदर झूलला, कलंदर सोनला, कलंदर जीवला, कलंदर सोनला।
जी सामीन, आपने गुफ्तगू सुनी और गीत भी सुने अरी बसर से। आप बताइएगा कैसी लगी हमारे मेहमान से ये मुलाकात।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
जी हाँ, आप ये शो सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से। आपके बहुत मैसेजेस आए जिनमें आपने बालों से मुतालिक सवालात पूछे हैं, तो चलिए मैं आपको घर में कुछ बुनियादी चीजों से हेयर स्पा का तरीका बताती हूँ। घर में मौजूद कोई सा भी तेल ले लें। कोई सा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर तेल में अपनी अपनी तर्ज की खास खूबियां होती हैं। तो जो घर में है वही ले लें। सरसों का तेल तो पाकिस्तान के तकरीबन हर घर में होता ही है, तो वही ले लें। नारियल का है तो वो ले लें। जो भी घर में मौजूद तेल बालों में लगाने के लिए है वो ले लें। उसे नीम गर्म कर लें और बालों की जड़ों में लगाकर उंगलियों की पोरों से हल्का हल्का मसाज करें। सिर्फ जड़ों में लगाना है, पूरे बालों में नहीं, ठीक है। 4-5 मिनट हल्का हल्का मसाज करें और उसके बाद आप यूं करें कि एक केला ले लें, एक चम्मच शहद ले लें, एक चम्मच मक्खन ले लें और मायोनीज ले लें। अगर आपके घर में मायोनीज नहीं है, वैसे तो इसके साशस भी दुकानों से मिल जाते हैं आप, लेकिन अगर किसी ऐसी जगह आप रहते हैं जहां मायोनीज दस्तियाब नहीं, तो आप 2 चम्मच कंडीशनर डालें। वो कंडीशनर जो आप बालों में शैम्पू के बाद लगाते हैं, तो 2 चम्मच कंडीशनर डालें और एक अंडा शामिल कर लें, और इस अमेजे को बालों में अच्छी तरह छोटे छोटे पोर्शन में बाल लेकर ऊपर से नीचे तक लगाएं। आप ये यकीनी बनाना है कि ये सारे बालों में लग गया है, और फिर उन बालों को जूड़े की शक्ल में सर पर बांध लें, और कोई प्लास्टिक का शॉपिंग बैग जिसे आप शॉपर कहते हैं वो लें, और सर पर जब उसे बांध लें तो फिर हेयर ड्रायर से अपने बालों को हीट दें। यानी ये नहीं कि हेयर ड्रायर आपने एक ही जगह से पकड़े रखनी है और बाल जो है वो आपको जलना शुरू हो गए हैं, नहीं, उसमें से निकलने वाली गर्म हीट जो है वो आप उसको हल्के हल्के घुमाते रहें, थोड़ी देर एक जगह पे रखें फिर दूसरी जगह पे, और बालों को उससे हीट दें। आपने देखा होगा कि हेयर सैलून में जब आप जाते हैं हेयर स्पा के लिए आप जाते हैं, तो एक गर्म वो कैप सी होती है जिसके नीचे आपको बिठा देते हैं, तो ये हेयर ड्रायर से आप वही काम लेंगे। तो तकरीबन 4-5 मिनट जो है वो आप बालों को हीट दें, और उसके बाद आप 1 घंटा उसको बालों में लगा रहने दें, और फिर उसे किसी माइल्ड शैम्पू से धो दें। कोशिश किया करें कि महीने में एक दफा अगर बेबी शैम्पू कोई आपके घर में है तो उससे बाल धो लें, ताकि वो केमिकल जो आप मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी जल्द जो है उस पर किसी तरह से खुश्की और सिकरी बन रही है, तो बेबी शैम्पू आप इस्तेमाल कर लें। आप देखेंगे कि जब आप इस तरह से हेयर स्पा करेंगे तो कितना फर्क पड़ा है आपको, आपके बालों को। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, इस्तेमाल करके बताइएगा। जैसे पिछली दफा जो मैंने टिप्स दी थी वो कुछ हमारी लिसनर्स जो हैं उन्होंने वापस लिखा है कि उन्होंने इस्तेमाल किया और बहुत ही फर्क महसूस किया उन्होंने, क्योंकि रूटीन में हम उस तरह से अपनी स्किन को साफ नहीं कर रहे होते, जब आप थोड़ी सी तवज्जो देते हैं तो जाहिर है फर्क तो नजर आता है।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप ये शो सुन रहे हैं, और मैं हूँ सादिया ज़िब्रांझा। आप हमें मैसेज भेज सकते हैं facebook.com/sadiazibranjha VOA Urdu। ताज़ा तरीन खबरों और वीडियो रिपोर्ट्स के लिए आप आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल है @voaurdu। सामईन, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से ये शो, और मैं हूँ सादिया ज़िब्रांझा। और अब बारी है आपकी सबसे फेवरेट सेगमेंट यानी आपकी खतूत की, खतूत यानी आपके फेसबुक के मैसेजेस की। तो सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमारे शोज को सराहा और इस नए पैटर्न को पसंद किया, बहुत शुक्रिया। रजिया ने पन्नू आंकिल से मैसेज किया और लिखा है कि सादिया बाजी, मैंने आपका शो सुनने के बाद आपके बताए हुए घरेलू टोटके का इस्तेमाल किया, यकीन कीजिए एक ही दफा में बहुत फर्क महसूस किया, मैं तो अब हर हफ्ते इसे जारी रखूंगी। बहुत अच्छी बात है रजिया, हमें अपना ख्याल रखना ही चाहिए। ये है जनाब अली मिर्जा, वो लिखते हैं, बाजी एक ही वक्त में मैं खुश भी हूँ और दुखी भी। खुश इसलिए कि मैंने मुंजी लगा रखी है, मुंजी यानी चावलों की फसल, ठीक है, और आपको तो पता ही है इस फसल को कितना पानी चाहिए होता है, तेल खरीद खरीद कर पानी देना पड़ता है मोटर के जरिए, लेकिन बारिशों ने ये मसला हल कर दिया है। लेकिन पानी में डूबे लोगों और शहरों का हाल देखता हूँ तो दुख होता है। अली मिर्जा साहब, शहरों और देहातों में अगर निकासी आपका निजाम हो तो ऐसा क्यों करो, ये तो एक खैर बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन वो काम जो हम शहरी अपनी सतह पर कर सकते हैं, कम से कम हम तो उसमें अपना किरदार अदा कर ही सकते हैं, और वो ये है कि हम नालियां साफ रखें, शॉपिंग बैग्स या कचरा इधर उधर ना फेंकें ताकि वो कहीं भी बंदिश का सबब ना बने, और अगर गलियां और घरों के दरवाजे आप ऊंचे बना रहे हैं तो नालियां भी उसी हिसाब से बनाएं, इससे काफी हद तक आप पानी की रवानी को दुरुस्त रख सकते हैं। राना उमर नवाज ने मंगवाल से लिखा है कि पहली बार आपके शो में शामिल हो रहा हूं और ये बताना चाहता हूं कि मैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस का बहुत बड़ा परिस्तार हूं और मुदसरा, यास्मीन और बहजत की आवाजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। राना साहब, तीनों की जानिब से शुक्रिया कबूल कीजिए, और हमारे प्रोग्रामों को सुनने और सराहने का भी शुक्रिया, और अगर कोई खास मौजू जो आप चाहते हैं कि हम अपने शोज में शामिल करें तो जरूर बताइएगा। इकबाल अजीम ने पुराने खूह से लिखा है कि सादिया बाजी, आप लोग अजीम हैं, ऐसे में जब आप लोग दफ्तरों में भी नहीं जा पा रहे, आप लोगों ने हमसे रابطہ नहीं तोड़ा और इतने अच्छे प्रोग्राम भी पेश कर रहे हैं। मैं सभी शोज सुनता हूँ क्योंकि मेरी छोटी सी किराने की दुकान है जिस पर सारा दिन रेडियो चलता रहता है, और मैं आप लोगों के नशर मुकर्रर के तौर पर चलने वाले शोज भी सुनता हूँ। मैं दाद देता हूँ आपकी टीम को जिन्होंने घरों से भी इस मायार का काम जारी रखा हुआ है, बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। जी इकबाल साहब, हमारी पूरी टीम ने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि प्रोग्रामों में कोई खलल ना आए और ना ही मायार पर कोई फर्क आए, आपने इस बात को महसूस किया और हमारी कोशिशों को सराहा, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारा आज का ये शो खत्म होता है। आप हमें मैसेज भेज सकते हैं facebook.com/sadiazibranjha VOA Urdu, और ताज़ा तरीन खबरों और वीडियो रिपोर्ट्स के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल है @voaurdu। اگلے ہفتے آپ سے ہوا کے دوش پر پھر ملاقات ہوگی. سعدیہ عزیز رانجھا کو وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اے حسن حقیقی نور ازل تن واجب تے امکان کہوں تن خالق ذات قدیم کہوں تن حادث خلق جہان کہوں تن مطلق محض وجود کہوں تن المیا آیان کہوں ارواح نفوس عقول کہوں اشبا حقیقت ماہیت تن عرض صفت تے شان کہوں انواع کہوں اوزا کہوں ادوار کہوں اوزان کہوں.
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا گیا.